जो महात्मा पुरुष होते हैं उनका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अपने यहां जो सत्संग की बातें होती है उसमें जैसे विघ्न आ जाते हैं वैसे विघ्न महात्मा पुरुषों का जहां सत्संग होता है बहुत कम आते, नहीं आते। ये भी कहा जा सकता है कि नहीं आते। ये बात हमारी देखी हुई है। हम जब छोटे थे उस समय मेरी नानी मेरी माँ रतनगढ़ में सत्संग के लिए एक साधु के पास जाया करती थी। लक्ष्मीनाथ जी महाराज वहां बहुत अच्छे साधु माने जाते थे। वे कोई न कोई पुस्तक देखते रहते थे। कभी सत्संग की बात करते तो कभी पुस्तक देखते, कभी भजन ध्यान करते। मैं भी कभी कभी नानी जी के साथ जाया करता था। वे मुझे रास्ते में समझा देती कि देखो बेटा तुम उस समय चुप रहना, सत्संग में बाधा पहुंचाओगे तो सबको बाधा होगी। तो मैं हल्ला नहीं मचाता, चुपचाप बैठा रहता। मैं तो छोटा बच्चा था, सत्संग क्या समझता, सत्संग के लिए नहीं बैठता। बस माँ ने कह दिया, नानी ने कह दिया, पास में बैठ जाता। पर वहां पास में झाड़ियां लगी हुई थी, उनमें बोर देखता तो बोर खाने की मन में आती, तो मैं बोर खाने के लिए वहां चला जाता। वहां कई भाई आ जाते। वहां पास में हनुमान जी का मंदिर था तो वे लोग हनुमान जी के लिए नारियल चढ़ाते थे, इनसे गिरी प्रसाद मिल जाता था। तो हमारे तो जाने का उद्देश्य था कि गिरी खावे और बोर खावे, अपना काम तो हो गया, अब सत्संग हम क्या समझे। बच्चे होने के नाते शोर और चंचलता कर सकते थे पर मनाही थी। यहां तक कह दिया नानी ने कि तुम यदि चंचलता करोगे तो मैं तुमको नहीं लाऊंगी। तब मैं सोचता कि चंचलता करेंगे तो बेर और गिरी नहीं मिलेगी, ये मेरे मन में लोभ था, इसलिए मैं वहां चुपचाप रहता। फिर जब समय अधिक होने लगता तो मैं सोचता कि अब घर जाऊं, तो मैं अपने नानी के कपड़ा पकड़ कर खींचता, क्योंकि बोलने की मनाही थी। कपड़ा खींचने पर वे नाराज होती। मेरी नानी का कपड़ा खींचना और नाराज होना वे संत देखते, तो वे संत बोलते कि देखो लड़का जल्दीबाजी करता है, तुम चली जाओ। और फिर वे चली जाती। रास्ते में मुझे धमकाती कि मैं इसीलिए तुमको साथ में नहीं लाना चाहती हूं, वहां जाने के बाद जल्दीबाजी करती हो, तुमको तो सत्संग समझ में नहीं आता, लेकिन हम तो सत्संग समझते हैं, हमको सत्संग छोड़ा देते हो, चलो चलो लगाते हो। तो इस प्रकार मैंने वहां देखा उन संत के प्रभाव से वहां कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता, और यदि कोई हल्ला मचाता तो दूसरे आदमी इशारे से कहता कि हल्ला मत करो। महाराज को मालूम होगा तो ठीक नहीं होगा। कोई भी आदमी कहीं हल्ला करता रहा होता तो दूसरे लोग मना करते और बालकों को प्रेम से समझा देते। मैं ये देखता था हल्ला गुल्ला नहीं होता, कोई विघ्न अपने आप ही नहीं होता। इतनी बात कहने का मेरा मतलब है कि ये महात्माओं की एक अलौकिक शक्ति होती है, उनका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा हो वहाँ किसी का प्रभाव काम नहीं करता, परंतु जहाँ महात्मा लोग होते हैं वहाँ उनका प्रभाव पड़ता है, वहाँ बच्चे भी हल्ला गुल्ला नहीं करते। बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाए वैसा ही करते हैं। अपने यहाँ एक रीति है मारवाड़ी समाज में कि रसोई घर में कोई बच्चा नहीं जाता। जो छोटा बच्चा है, माँ का दूध पीने वाला है, तो माँ उसे रसोई से बाहर आकर के दूध पिलाती है, क्योंकि लड़के या लड़की को माँ रसोई घर में आने नहीं देती, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं पेशाब कर दें कहीं टट्टी कर दें उनका क्या विश्वास। रसोई घर में ये जाने योग्य नहीं है, तो उनको ऐसी आदत डाली जाती है। कोई 3-4 साल का लड़का या लड़की खुद ही रसोई घर में फिर नहीं जाती, क्योंकि उनको ऐसा अभ्यास करा दिया जाता है और वे समझने लगते हैं कि मेरा यहां अधिकार नहीं है रसोई में जाने का। वैसा ही आपको ऐसा ही उसको मानना भी पड़ता है। हम लोग इतने बड़े हो गए, अपने मन में किसी भी प्रकार का निर्णय कर लें तो उसका पालन होना संभव है, कोई असंभव थोड़ा ही है। छोटे बालक 6 बरस के, 8 बरस के, 12 बरस के, और वे यदि रोवे या विघ्न करें तो समझना चाहिए कि उनके ऊपर कोई शासन नहीं है। और जो सत्संग के लिए आते हैं उनकी श्रद्धा नहीं है, यदि बालकों पर शासन कर लें तो वहां कोई भी विघ्न बाधा नहीं आए, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने यहां तो अनेक प्रकार की बाधा आती है, परंतु यदि महात्माओं का यहां प्रभाव होता तो कोई विघ्न बाधा नहीं आती। महात्माओं का एक अलग ढंग का ही प्रभाव पड़ता है। किसी ने कहा कि आप कोई ऐसी बात कहें जो धारण हो जाए। बात तो बड़ी अच्छी पूछी, परंतु धारण होने की बात है, वो हमारे पास ऐसी शक्ति थोड़ी ही है जो हम आपके हृदय में धारण करवा दें या बाध्य होकर आपको माननी पड़े, ऐसा हमारे में प्रभाव थोड़ा ही है। हमारी बात को बाध्य होकर काम में लेना पड़े ये बात बनती नहीं है। सुनने वाले भाई हैं, वे सुने उसको काम में लें, विश्वास करें, तभी बात बन सकती है। बात तो कहती नहीं कि मैं काम में नहीं आऊंगी, और बात ये भी नहीं कहती है कि मैं तुम्हारे हृदय में नहीं बैठूंगी या मैं बैठूंगी। बात थोड़ी बोलती है, उसको तो आप बैठाते हैं तब बात बनती है। हृदय में बात कब बैठती है? जब आपके अंदर विश्वास होता है। एक तो विश्वास और एक परमात्मा की प्राप्ति की लगन। लगन और विश्वास दोनों रस्से के जेवड़े के समान है। बट दिया जाता है, उसमें 2 चीजें हैं, फिर उनको बट करके एक किया जाता है। ऐसे ही विश्वास और लगन दोनों के बट लगाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विश्वास की कमी है और या लगन की कमी है। मान लो हमारे कोई बीमारी हो गई, जिस वैद्य पर हमारा विश्वास है वो कहता है कि भाई ऐसा करो, वह वैसा बतलाता, हम वैसा ही करते हैं, जरा भी भूल चूक नहीं करते कि यदि इतने बजकर इतने मिनट पर अमुक वस्तु के साथ ये दवाई देनी है, बतला दिया कि देखो ये मकर ध्वज है, शहद के साथ देना है। मान लो शहद नहीं है तो क्या हम ये सोचते हैं कि शहद नहीं है तो क्या हुआ, इसे जल के साथ ही पिला दो? नहीं नहीं, वैद्य जी से पूछो, वैद्य जी ने तो शहद में देने के लिए कहा है, हम पानी के साथ देंगे तो कहीं नुकसान हो जाएगा। तो वे जाकर वैद्य जी के पास पूछते हैं कि वैद्य जी शहद नहीं है तो कैसे लें? तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि आपके मन में विश्वास है कि यदि वैद्य जी के कहे बिना काम करेंगे तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी। इधर वैद्य जी पूछेंगे कि क्या आपने शहद में दवाई दी? कहते हैं जी शहद तो मिला नहीं, हमने पानी में दे दी। तो भाई तुमको पानी में देने का क्या अधिकार, किसके कहने से दिया? तो अपने पर जिम्मेदारी आती है, उसमें वैद्य जी क्या करेंगे? फिर वैद्य जी पूछता है कि कोई फुल्का वगैरह चुपड़ करके तो नहीं दिया, कि फुल्का वगैरह तो नहीं दिया पर दोपहर के समय आज थोड़ी मिठाई आई थी, मिठाई दे दी। तब वैद्य जी कहते हैं कि जब तुम जान करके मारना चाहते हो तो ये मरेगा। इस प्रकार कहा जाता है कि जो कुछ भी हो व्यवहार में, झूठ कपट बेईमानी मनमानी ये नहीं करनी चाहिए। आप कहते हैं कि झूठ कपट बेईमानी तो मैंने नहीं की, किंतु एक आदमी को धोखा तो दे दिया, दगाबाजी तो हो गई, वह तो ज्यादा जुर्म का काम कर दिया। उसको क्या धोखा दिया? उसने कहा अपने यहां रुपयों की थैली रखी थी, उसे उठाकर हमने तिजोरी में रख दी और उसने जाकर खोजी तो अपने चुप रहे और वो खोज कर चला गया, तो ये चोरी हुई क्या? हम इसमें मौन रहे, झूठ नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, लेकिन दूसरों का रुपया तो हजम कर लिया, ये बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। तो इस प्रकार से जो आदमी पाप करता है उसकी रक्षा बताओ कौन करेगा? इसी प्रकार से ये बात सुनी जाती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और हम नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें कारण है विश्वास नहीं है। जिस विषय में हमारा विश्वास होता है उसमें हम कभी गड़बड़ नहीं करते। मान लो कोई खून का मामला हो और हम समय पर कचहरी पर न जाए और हाकम का हुक्म नहीं मानते तो हमको जेल हो जाएगी। इस भय से हम ठीक समय से 5 मिनट पहले हाजिर होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि पुकार सुनाई न पड़े और आवाज देने वाला कह दे कि हाजिर नहीं है, इसलिए हम पहले से ही जाकर बैठ जाते हैं। पुकार होती है 4 घंटे बाद तो हम पहले से ही तब तक बैठे रहते हैं, हुक्म के पालन में पाबंद रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा मुकदमा खराब हो जाएगा। पर यहां तो जन्म मरण का मुकदमा लगा हुआ है, लोगों को कोई डर ही नहीं लगता है, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। ये जन्म मरण का मुकदमा मानव शरीर की पेशी में समाप्त तो हो सकता है, परंतु इस मुकदमे से कोई भय नहीं है, न शास्त्रों पर विश्वास, न महात्माओं की बात का विश्वास, न नरकों की मिलने वाली बात को भय में लाते हैं। संसार में कोई दुख पाना पड़े उसके लिए तो बड़े डरते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो हमको ये दंड मिलेगा, लेकिन परमार्थ के विषय में विश्वास नहीं है। विश्वास हो जाए कि ये काम हम नहीं करेंगे तो हमको दंड मिलेगा, तो फिर वो काम आप करोगे। इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए, शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, और जिसका निषेध किया है उसका तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। यदि यह विश्वास हो जाए तो कोई भी मनुष्य पाप नहीं करेगा। पाप करने का अभिप्राय यह है कि शायद उसका दंड मिले या न मिले। यदि निश्चय हो जाए कि दंड अवश्य मिलेगा तो ऐसा कौन मूर्ख है जो थोड़े सुख के वास्ते दंड सहन स्वीकार करेगा। 5 रुपए की चोरी करे और 6 महीने जेल जाना पड़े, ऐसा कौन मूर्ख होगा। आपने कहा कि आप ऐसी बात कहें जो धारण कर सके, बात की तो ये शक्ति है नहीं, धारण हो जाए। आप अगर काम में लाए तो कोई असंभव नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, ला सकते हैं। कोई भी मनुष्य हो, गीता रामायण भागवत की जो बात बतलाई जाती है, शास्त्र की जो बात बतलाई जाती है, उस पर विश्वास करें कि गीता भगवान का वचन है, शास्त्र महात्माओं का वचन है, और ये हमारे ही कल्याण के लिए कही हुई बात है। ऐसा विश्वास करके तत्परता के साथ प्रयत्न करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उसका पालन न कर सकें। ये समझना चाहिए कि ओहो कितनी ऊंची बात है, दामी बात है, हमारे जीवन की बात है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आप लोगों को रास्ते चलते यदि कोई 5 करोड़ रुपए का हीरा मिल जाए तो कितना आपके दिमाग के अंदर हीरा चढ़ा रहता है। पर सत्संग की अच्छी बात मिलती हो तो उधर विचार ही नहीं करते। व्यापार करते हो, कोई रुपए के फायदे की बात कह दी जाए तो तत्काल उस बात को पकड़ करके व्यापार में काम में लाते हैं। रुपए से अधिक दामी बात तो आत्मकल्याण है, कितना ही दामी है परंतु वो तो रुपए को दामी समझता है। जो रुपए से हीरे से ज्यादा दामी कल्याण को समझता है, आदर देता है, वो इस मार्ग को छोड़ कैसे सकता है। हम तो जब इस बात को सोचते हैं, विचारते हैं, तब हमारे दिल में यही बात आती है कि हम जिस बात को उत्तम समझते हैं, बहुत दामी समझते हैं, उसको नहीं छोड़ सकते। हम ऐसा ही विचार हर आदमी के लिए करते हैं। आप जिसको दामी समझ लेते हैं उसका त्याग नहीं कर सकते, तो हम मामूली बात के लिए विचार करके देखते हैं हमारे लिए जो हानिकारक होता है उससे हम दूर रहते हैं, जिसे लाभप्रद समझते हैं उसको हम त्याग नहीं सकते हैं। तो ये हमारे अंदर आदत तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर आदत ही ना हो। अब ये है कि आपने लाभ किस में समझ रखा है, हानि किस में समझ रखी है, केवल इस समझ को ही तो देखना है। सांसारिक लाभ हानि की अपेक्षा तो धार्मिक विषय, आध्यात्मिक विषय, परमात्मा का विषय बहुत दामी है, इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ इसकी अवहेलना होती है वहाँ समझो कि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्रद्धा और विश्वास का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, उसकी तो ये ताकत नहीं है कि छोड़ दे। भगवान राम जी के पिता दशरथ जी के वचनों पर बड़ी श्रद्धा थी, विश्वास था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है, रामचंद्र जी से उनकी माता कौशल्या जी ने कहा कि तेरे पिताजी की आज्ञा है तुम्हें वन जाने की, किंतु मेरी आज्ञा है तुम मत जाओ। रामचंद्र जी ने कहा कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे सामर्थ्य की बाहर है, मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन न करूं। मैं विष खा सकता हूं, अग्नि में कूद सकता हूं, पिता की आज्ञा से सब कुछ कर सकता हूं, ये तो बात ही क्या है। इससे ये सिद्ध होता है कि रामचंद्र जी की पिता के वचनों में बड़ी श्रद्धा थी, वे उनकी अवहेलना नहीं कर सकते थे। ये समझना चाहिए कि कठिन से कठिन यदि कोई काम हो जाए और अगर पालन करने की श्रद्धा हो, वह उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। जो उच्च कोटि का श्रद्धालु है उसकी तो बात ही क्या है। यदि वह अपने श्रद्धे की बात काम में नहीं ला सके तो वह छटपटाता है, जैसे प्राण अभी निकलते हों। वो संसार में जी नहीं सकता है, संसार में वह उसके अनुसार ही अपना जीवन बना करके जीना चाहता है। गौरांग महाप्रभु ने जब हरिदास का त्याग कर दिया तो हरिदास इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके, वे जाकर गंगा जी में कूद गए, गंगा जी के प्रवाह में बह गए, वापिस मिले नहीं, उनके प्राण चले गए। लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब त्याग दिया तो लक्ष्मण जी चले गए और जाकर सरयू नदियों में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम के द्वारा मैं त्यागा गया हूं, अब मेरा संसार में रहने का क्या अर्थ है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में है। तो उच्च कोटि के पुरुषों का जिनमें श्रद्धा और विश्वास होता है, उनके छोड़ने पर वे जी कैसे सकते हैं। और भी उच्च भाव वे होते हैं कि उसी वक्त उनके प्राण नहीं रह सकते। भरत जी महाराज का रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। राम के 14 वर्ष के वनवास की अवधि जब समाप्त हो गई तो भरत जी महाराज की राम जी के विरह में ऐसी दशा हो गई कि मरने की सी तैयारी हो गई। कोई जान करके मरने की बात नहीं है, परंतु अपने अंदर से अपने आप ही मृत्यु अच्छी सी लगती है, मरने की तैयारी होती है, जीने की इच्छा ही नहीं रहती। भगवान के विरह की व्याकुलता में वियोग के कारण उनके प्राण जाने की तैयारी हो गई। उन्होंने मरने के लिए हट नहीं किया, यह नहीं कि अग्नि जला ले, अग्नि में प्रवेश कर ले, कि जहर खा ले, ऐसा कुछ नहीं किया। और अंदर में आया कि राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जनुपोत। रामचंद्र जी का जो विरह है वह तो सागर है, उसमें भरत जी का मन है, वो डूब गया। उस समय हनुमान जी उनके प्राणों को बचाने के लिए नौका के रूप से आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच गए। जैसे कोई आदमी डूबता हो, बचाने के लिए कोई नौका लेकर आ जाए और उसको बचा ले, तो ऐसे ही भरत जी विरह रूपी सागर में डूब रहे थे, प्राणों के जाने की तैयारी थी। हनुमान जी वहां पहुंच गए, नौका रूप थे हनुमान जी, बचा लिया। इससे ये समझना चाहिए कि भरत जी महाराज का भगवान में इतना प्रेम था, उनके वियोग को वे सह नहीं सके। 14 वर्ष तक का वनवास तो उन्होंने सहन किया, वे श्रद्धा के बल पर किया, क्योंकि राम जी ने स्वयं ने कहा था कि 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा। क्योंकि साथ साथ में श्रद्धा भी थी, पर श्रद्धा ने जब जवाब दे दिया, जवाब कैसे दे दिया कि 14 वर्ष तक तुम यहां रहो, 15वें वर्ष के पहले दिन ही आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा कि 14 वर्ष की अवधि तो आज पूरी हो रही है, कल 15वां दिन लग रहा है, राम जी अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो मैं क्या करूं, मैं अपने प्राणों को रखकर क्या करूंगा, मैं किसी अग्नि में प्रवेश करूं क्या करूं, जीने की इच्छा ही नहीं होती। भरत जी महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, 14 वर्ष की तो अवधि है। भरत जी की भगवान की बातों पर श्रद्धा थी, आज्ञा का पालन किया। जब आज्ञा का पालन हो चुका, 14 वर्ष पूरे हो चुके, श्रद्धा भी पूरी हो गई, तब भरत जी किस आधार पर जिए? अब तक तो श्रद्धा के आधार पर जीवित थे, भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। अब आज्ञा का पालन तो हो चुका, अब एक क्षण भी भगवान के बिना भरत जी कैसे रह सकते हैं। यह भरत जी का प्रेम था। यदि कहो कि इतनी भारी भरत जी की श्रद्धा थी तो रामचंद्र जी ने यह आदेश ही क्यों दिया? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पिता ने अयोध्या का राज्य तुम्हें दिया है और मुझे वन का राज्य दिया है, तो तुम अयोध्या का राज्य करो। इस पर भरत जी ने वह बात नहीं मानी, क्योंकि उसका विरोध किया और कहा कि नहीं, आप लौट चलें, यदि नहीं चलेंगे तो मैं अनशन व्रत करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यदि यह कहो कि यहाँ भरत जी की श्रद्धा कहाँ रही, तो ठीक है, यहाँ ये समझना चाहिए कि भरत जी का भगवान राम में बड़ा भारी प्रेम था। प्रेम रक्षा करता है, इसलिए प्रेम के नाते इस व्यवहार का किया जाना उचित था। यदि कहें कि भरत जी हट क्यों किए, तो यह हट करने में स्वार्थ का त्याग है, राज्य को ठुकरा रहे हैं और चाहते हैं कि महाराज राज्य करें और मैं उनके चरणों की सेवा करूं, तो ये हट बुरा नहीं है। यह भरत जी का अलौकिक प्रेम है, इस प्रेम के कारण से आज्ञा का उल्लंघन करना दोष नहीं है। जैसी स्थिति में जैसा मौका मिले वैसा ही तो होना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि जब रामचंद्र जी ने सुना कि सीता को लेकर लोग अपवाद करते हैं, तो उन्होंने भरत जी से कहा, भरत तुम सीता को वाल्मीकि आश्रम के नजदीक में छोड़ के आ जाओ। भरत जी आज्ञा का पालन नहीं कर सके। वहां बतलाया गया कि आज्ञा का पालन नहीं करने से भरत जी मूर्छित हो गए। यह आज्ञा का पालन करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि सीता जी निर्दोष हैं। ऐसे निर्दोष सीता जी को वन में अकेले कैसे छोड़ें? और दूसरी बात, सीता जी का भगवान के साथ वियोग होगा। मेरा तो इस प्रकार से वियोग हुआ, उसमें इतना कष्ट हुआ, सीता जी को कितना कष्ट होगा। ये सब सोच करके भरत जी मूर्छित हो गए। बाद में रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न से कहा कि तुम सीता को छोड़ आओ, तो यही दशा शत्रुघ्न जी की हो गई। फिर लक्ष्मण जी आए, उनसे कहा कि अरे लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक काम कहता हूँ, उसका पालन करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि क्या आवश्यकता पड़ गई वहां मेरी, मैं भगवान की आज्ञा का कब उल्लंघन करता हूँ। किंतु भरत और शत्रुघ्न को मूर्छित देखकर बड़ा भय हुआ कि अरे ऐसी क्या बात कहेंगे, मेरे दोनों बड़े भाई, एक बड़े भाई एक छोटा भाई मूर्छित हो गया। रामचंद्र जी ने कहा, देख मैं तुम्हें शपथ दिलाकर कहता हूँ, मेरी आज्ञा का तुम्हें अवश्य पालन करना होगा। लक्ष्मण जी थर थर कांपने लगे, ये क्या बात होगी। रामचंद्र जी ने निर्भीक होकर के कहा, सीता को लेकर संसार में मेरा लोकापवाद हो रहा है, मेरी निंदा हो रही है, जाओ सीता को लेकर वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को भगवान के ये वचन बड़े कठोर मालूम दिए, पर उपाय क्या करें। भगवान ने शपथ दिला दी, आज्ञा का पालन तो करना ही होगा, तो लक्ष्मण जी ने ये काम किया। भरत और शत्रुघ्न मूर्छित हो गए, पर लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों नहीं हुए। बात यह है कि भगवान राम जी ने पहले ही शपथ दिला के कह दिया कि मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। भरत जी को और शत्रुघ्न को ऐसी शपथ पूर्वक आज्ञा नहीं दी थी। और दूसरी बात यह थी कि लक्ष्मण जी के साथ में सीता जी ने बड़ा भारी अनुचित व्यवहार किया था, इस कारण वे ऐसा व्यवहार सीता जी के साथ कर सके नहीं तो नहीं कर सकते थे। लक्ष्मण जी पर जो संदेह किया सीता जी ने, मरम वचन जब सीता बोला, तब ये लक्ष्मण जी के प्रति सीता जी ने बड़ा अनुचित व्यवहार किया। इस बात को भगवान ने भीतर में ध्यान में रख करके लक्ष्मण जी के द्वारा ही छुड़वाना अच्छा समझा। जब मारीच को मारने के लिए राम जी गए, उस बीच मारीच ने राम जी की आवाज में, भाई पर संकट कभी आ ही नहीं सकता है, उस समय सीता जी ने बड़े कठोर वचन कहे कि अच्छा तू चाहता है कि तेरा भाई तो मर जाए, तो मैं सीता को अपने घर में रख लूं, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, पर तेरे या भरत के साथ में कभी नहीं रहूंगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ। ये वचन लक्ष्मण जी के हृदय में चुभते रहे। मान तुम लक्ष्मण से कहना, मेरा बड़ा अपराध हो गया, मैंने तुझे बड़े अनुचित वचन कहे, उनका विचार तुम कभी मत करना। इस प्रकार के वचन जब आकर के हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को सुनाया, तो लक्ष्मण जी का मन हल्का हो गया। फिर भी लक्ष्मण जी अपने हृदय को कठोर बनाकर राम जी की आज्ञा लेकर सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास रोते रोते छोड़ आए। परंतु भरत और शत्रुघ्न तो ऐसा नहीं कर सकते थे, अपने स्वामी की आज्ञा पालन हाँ क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीता के व्यवहार से भरत और शत्रुघ्न कभी भी लक्ष्मण के समान दुखी नहीं हुए थे, इसलिए वे मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी इसलिए मूर्छित नहीं हुए कि सीता के व्यवहार से भी बहुत खिन्न भी हो गए थे। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन न करने पर या तो भरत और शत्रुघ्न जैसी दशा होती है, या कम से कम लक्ष्मण जैसी दशा तो होनी चाहिए। लक्ष्मण ने आज्ञा पालन तो किया, परंतु रोते हुए किया, दुखित हृदय से पालन किया, क्योंकि आज्ञा अनुचित थी। वह समझते थे कि सीता कितनी पवित्र है, शुद्ध है, और इनको वन में छोड़ना उचित नहीं है। परंतु इधर राम जी का भी विचार बड़ा ऊंचा था। वे सोचते थे कि मेरा और सीता का वियोग तो कभी संभव ही नहीं है, मेरी प्रजा जिस काम को नहीं चाहती है वो काम नहीं करना चाहिए, ये राजाओं में एक आदर्श स्थापित करने के लिए मुझे ये व्यवहार करना चाहिए। सीता निर्दोष है, भगवान अच्छी तरह से जानते थे, परंतु भगवान ने सोचा कि मैं सीता की तरफ ध्यान दूं कि प्रजा की तरफ ध्यान दूं। एक राजा होने के नाते मुझे प्रजा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। उनका ये सिद्धांत था कि जिस किसी प्रकार से प्रजा को संतोष हो वही काम करना चाहिए। सीता की तो बात ही क्या है, प्रजा के लिए तो वे अपना प्राण त्याग कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। इसलिए जब भी जहाँ का शासन अच्छा होता है, प्रबंध बढ़िया होता है, वहाँ यही कहा जाता है कि भाई वहाँ तो राम राज्य है। राम के राज्य में वहाँ जैसा होता था वो दिखलाया गया कि जब श्रद्धा होती है तब ऐसा व्यवहार होता है। श्रद्धा होने पर मनुष्य सब कुछ कर सकता है। भरत जी का भगवान राम के प्रति बड़ा प्रेम था, मगर साथ में बड़ी भारी श्रद्धा भी थी, इसलिए भरत जी भगवान से एक पल भी अलग नहीं रहना चाहते थे। किंतु भगवान की आज्ञा हुई, कर्तव्य समझे, वे 14 वर्ष तक भगवान से अलग रहे, और उसके बाद में जब भगवान मिले हैं फिर भरत जी सदा राम जी के भगवान के पास ही रहे। शत्रुघ्न जी भी लवणासुर को मारने चले गए, और जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो घोड़े की रक्षा के लिए भी चले गए, और लक्ष्मण जी अपने पुत्रों को राज्य देने के लिए चले गए, किंतु भरत जी तो सदा भगवान के चरणों में रहे। भरत जी का बहुत उच्च कोटि का भाव था। यदि कहो कि भरत जी ननिहाल क्यों चले गए उस समय, यदि ननिहाल गए नहीं होते तो राम जी का वनवास नहीं होता, तो राम जी से भरत जी का वियोग ही नहीं होता। तो इसमें एक बड़ा भारी रहस्य है कि भरत जी ननिहाल क्योंकि तो उस समय भरत जी के मन में इतना उच्च कोटि का भाव नहीं था। जब राम जी के साथ उनका वियोग हुआ तब ये उच्च कोटि का भाव पैदा हुआ। इसीलिए सब संत महात्मा विरह भक्ति के अंदर चलते हैं तब भगवान में विशेष प्रेम उमड़ता है। भरत जी को क्या मालूम था कि इस प्रकार से राम जी का मेरे जाने के बाद वनवास होगा। भरत जी ने आकर जब सुना कि श्री राम मेरे लिए राज्य छोड़कर वन में चले गए, तो तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि रामचंद्र जी केकई माता से कहते हैं कि पिता की आज्ञा है, आपकी सम्मति है, और मेरे रामचंद्र जी केकई माता से बोलते हैं कि पिता की आज्ञा है, आपकी सम्मति है, और मेरे प्यारे भरत को राजगद्दी मिलेगी, इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। रामचंद्र जी के इन शब्दों ने भरत जी को बहुत प्रभावित किया। राम जी का और भी जो व्यवहार है वो भी भरत जी को प्रभावित करने वाला है। इस वास्ते भरत जी महाराज का भाव बदल गया। भरत जी महाराज ने जब ननिहाल से वापस आकर अयोध्या में चर्चा सुनी कि राम वन में चले गए, और भगवान राम के विषय में जो जो बातें सुनी उनका भरत पर बहुत प्रभाव पड़ा। कौशल्या ने कहा कि बेटा जब तेरा ज्येष्ठ भ्राता श्री राम वन को गया था उस समय ये कह गया था कि माँ तू चिंता मत कर, मेरा भाई भरत मुझसे भी बढ़कर तेरी सेवा करेगा, और यही बात अब मैं देख रही हूँ। भरत जी सोचने लगे कि देखो भगवान राम का मेरे ऊपर कितना विश्वास है, वे समझते हैं कि भरत मुझसे भी बढ़कर व्यवहार करेगा तो मेरा वैसा ही व्यवहार अब होना चाहिए, भगवान का जो मेरे प्रति विश्वास है उसको बनाए रखना चाहिए। राजगद्दी पर बैठने के लिए गुरुजी ने बहुत कहा, और माता कौशल्या ने कहा कि भरत जब गुरुजी कह रहे हैं तो तुम बात मान लो। किंतु भरत ने कहा कि हमारे रघुकुल की रीति है, जो बड़े हैं वही राज्य करते हैं, ज्येष्ठ भ्राता राम का ये अधिकार है, मेरा नहीं है। मुझे राजा बनाने से न मेरा हित है, न आप लोगों का है, न प्रजा का है। आप लोग जो कुछ भी कहते हैं मेरे हित की बात कहते होंगे, लेकिन मुझे हित दिखता ही नहीं है, और ये बात मेरे समझ में ही नहीं आती है, इसलिए मैं आपकी बात को काम में नहीं ला सकता, इसे मानने में मैं लाचार हूँ, मेरा अपराध समझकर क्षमा करो। कैसा भरत का भाव, भगवान रामचंद्र जी का बर्ताव सुन सुन करके भरत के भाव उच्च कोटि में बदलते चले गए। जब कोई भरत जी को साधु साधु, सब कोई भरत जी को साधु साधु कहने लगे और ये प्रसिद्ध हो गया, यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो भगवान के प्रेम भाव को संसार में कौन प्रकट करता। भरत जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत तुम बड़े धन्य हो, आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया, सारी दुनिया भगवान को भजती है और राम तुमको भजते हैं, तुमने बड़ा भारी तप किया था जिसके फल स्वरूप हमने बड़ा भारी तप किया था जिसके फल स्वरूप राम जी के दर्शन हुए और राम जी के दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि तुम्हारा दर्शन मिला, तुम एक रात्रि रहकर हमारे इस आश्रम को पवित्र करो। भरत जी के उस भाव को सुनकर के सुनने वालों के हृदय में कितना आनंद हुआ होगा। भगवान रामचंद्र जी के बर्ताव और व्यवहार को सुनकर भरत जी का ऐसा व्यवहार बर्ताव हुआ। रामचंद्र जी ने कैकेयी के प्रति कितने मधुर और प्रेम के वचन कहे, जिसे सुनकर कैकेयी का हृदय भले ही न बदला हो परंतु जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रेम श्रद्धा का भाव है उसका हृदय बदल ही जाता है। सुना जाता है कि बाद में भरत के बर्ताव को देखकर कैकेयी का भी हृदय बदल गया था। अध्यात्म रामायण में आता है जब चित्रकूट में सब कोई मिलने गए तो कैकेयी ने एकांत में भगवान राम से पश्चाताप करते हुए कहा कि मुझसे बड़ी भारी गलती हुई जिस कारण तुम्हें वन में आना पड़ा। राम ने कहा कि माँ कोई विचार मत करो, आपके विचार में जो कुछ हुआ है उसमें मेरी इच्छा है, आपने नहीं किया है, आप तो निमित्त बनी हो, सब मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी प्रेरणा से काम हुआ है, आपको कोई दोष नहीं है, आपको तो मैं केवल निमित्त मात्र समझता हूँ। कैकेयी ने कहा बेटा मेरा उद्धार कैसे होगा। राम ने कहा माँ आप कोई चिंता मत करो, जब सब मेरी इच्छा से हो रहा है, मेरी कृपा से, मेरी भक्ति भाव के प्रभाव से आपकी गति को कौन रोकने वाला है, आपकी तो बहुत उत्तम गति होने वाली है। ऐसा भाव उस जगह प्रकट होता है तो समझना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी का कितना उच्च कोटि का व्यवहार और भाव है। भरत जी प्रत्यक्ष इस बात को देख रहे हैं। भगवान राम के बर्ताव को देखकर भरत जी का मन बदल गया, जीवन बदल गया। यदि शुरू में ऐसे बर्ताव का प्रसंग आता तो भरत जी ननियाल थोड़ी जा सकते थे। जो मनुष्य अच्छा व्यवहार करता है उसका प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ता है, फिर राम जी के व्यवहार का भरत जी पर असर पड़े तो कहना ही क्या है, उनके व्यवहार का तो शत्रुओं पर भी असर पड़ता है। जो उच्च कोटि के पुरुष होते हैं उनके व्यवहार का असर भी लोगों पर पड़ता है, तो भगवान का तो कहना ही क्या है, हम लोगों को उच्च कोटि का व्यवहार करना चाहिए। यदि कहे कि अच्छे पुरुषों के वचनों का असर पापी पुरुष पर भी पड़ता है तो इसका कोई दृष्टांत आपके पास है कि कोई अच्छे पुरुष का दृष्टांत पापी पर अच्छे काम के लिए मिल गया हो? तो हमारे शास्त्रों में है, महाभारत में आता है। एक समय दुर्योधन बहुत भारी सेना लेकर पांडवों को मारने के लिए वन में गया। दुर्योधन का बर्ताव देवता लोग जान गए। इंद्र ने यह बात सभा में पेश की कि कोई ऐसा पुरुष है जो दुर्योधन को जीते जी पकड़ कर ले आए, हम आज देखना चाहते हैं पांडवों के साथ कितना अन्याय के ऊपर तुला हुआ है। ये बेचारे पांडव लोग वन में तपस्या करते हैं, दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, उनको दुख देने के लिए दुर्योधन सेना लेकर जा रहा है और आप में कोई ऐसा नहीं जो दुर्योधन को इस काम से रोक सके। तो वहां उस सभा में चित्रसेन खड़ा हो गया। चित्रसेन ने हाथ जोड़ करके कहा हे देवादि देव इंद्र, इस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे सेना चाहिए, तो ले जाओ। इंद्र ने सेना दे दी और वो चित्रसेन सेना लेकर चल पड़ा। इधर दुर्योधन सेना लेकर आया, इधर चित्रसेन सेना लेकर आया, दोनों का आपस में टकराव हो गया। दुर्योधन की सेना को चित्रसेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया और जाकर दुर्योधन को बांध लिया। थोड़े बहुत सैनिक बचे हुए थे, वे अपना प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। भागे हुए मंत्रियों में से कुछ लोग मिलकर युधिष्ठिर जी के पास पहुंचे और जाकर बोले कि महाराजाधिराज दुर्योधन आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो चित्रसेन गंधर्व ने उन पर आक्रमण करके आपके भाई को जीत कर बांध कर ले गए। देखो कितनी कपटता की बात करें। उन मंत्रियों ने आकर कहा कि हे महाराजाधिराज, दुर्योधन आपका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। राजा होने के नाते उनके पास सेना भी थी, परंतु चित्रसेन गंधर्व ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया और आपके भाई को जीत कर बांध लिया। अब महाराज क्या करना है, जो आप सोचो। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीमसेन से कहा कि अरे भाई, तुम दोनों जाओ, छुड़ा कर लाओ। मैं तो खुद चला जाता, लेकिन मैं तो अनुष्ठान में बैठा हूं। वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज। भीम ने कहा कि भाई साहब, मरने दो ना। मरने दो, ऐसी क्या बात है, दुर्योधन आपका दर्शन करने के लिए आएंगे। ये सब कपट की बातें हैं। यदि चित्रसेन गंधर्व उनको पकड़ लिया, मारता है, तो मरने दो। युधिष्ठिर बोले, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है भीमसेन, ये तो केवल मेरी आज्ञा का पालन करना है, विचार मत करो। अर्जुन, तुम्हारा क्या इस विषय में मत है? मैं तो अभी अनुष्ठान में बैठा हूं, नहीं तो मैं स्वयं चला जाता। अर्जुन ने बहुत गंभीरता के साथ कहा, महाराज मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा हो गई तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं शस्त्र छू करके प्रतिज्ञा करता हूं कि दुर्योधन को अवश्य छुड़ा कर ले आऊंगा। यदि गंधर्वराज समझाने बुझाने पर दुर्योधन को छोड़ देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो पृथ्वी माता गंधर्व राज का रक्तपान करेंगी, क्योंकि आज तक पृथ्वी को गंधर्वों का खून पीने के लिए नहीं मिला है। यह प्रतिज्ञा करने के बाद भीमसेन से कहा अर्जुन ने कि भाई साहब, अब तो भाई साहब की बात माननी पड़ेगी, मेरे साथ चलना होगा। भीमसेन ने नम्रता से युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया और दोनों भाई गए गंधर्व और चित्रसेन के साथ युद्ध किया। चित्रसेन अंदर से तो बड़ा प्रसन्न था कि देखो ये दोनों कितने बलवान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, दुर्योधन की सेना इनके सामने क्या कर सकती है। पर ऊपर से उन्होंने क्रोध दिखाया, खूब लड़ाई की, इन्होंने भी खूब शस्त्र अस्त्र चलाए और अंत में वे दुर्योधन को छुड़ा लाए और ला करके युधिष्ठिर के सामने खड़ा कर दिया। जैसे दुर्योधन बलि का बकरा हो, वह जमीन कुरेदने लगा और गर्दन नीची करके विचार करने लगा कि इस जीने से तो मेरा मरना अच्छा है। अरे जिनको मारने जा रहा था वो मुझे आज बचा रहे हैं, उनके सामने देखो मेरी क्या हालत है। उसको बहुत बुरा लगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, युधिष्ठिर जी ने देखा कि इसको बहुत शर्म आ रही है, ये लज्जा से गड़ा चला जा रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भाई दुर्योधन, तुम्हारे भाई लोग तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हें उनके पास चला जाना चाहिए। दुर्योधन बड़ा ढीठ था, वो वहां से ढीठ पड़े से यूं ही ढिठाई से वहां से रवाना हो गया। वहां देखा कि कोई नहीं है, तब दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि भाई अब तो अनशन व्रत करके प्राणों का त्याग कर देंगे, अब जीवन में कभी पांडवों से लड़ूंगा नहीं। तो उसको खोजने के लिए इधर उधर से दुशासन और कर्ण भी सब आ गए और बोले, अरे दुर्योधन आपको किसने छुड़ाया, आप तो बांध लिए गए थे। दुर्योधन ने बड़े शर्मिंदगी के साथ कहा, क्या बताऊं भाई दुशासन, कारण मुझे तो पांडवों ने छुड़ाया। पांडवों ने, तो क्या हो गया? इतनी शर्म की क्या बात है? कि पांडवों को मारने के लिए जा रहा था, उनका व्यवहार देखो, मुझे उन्होंने गंधर्वों से छुड़ाया, तो क्या हो गया? मुख पर क्या लज्जा शर्म की बात आती है? पांडवों का कर्तव्य था, आप राजा हो, वे आपकी प्रजा है, उनका धर्म है वे राजा की तरह आपकी मदद करें, लज्जा की क्या बात है, शर्म की क्या बात है? मैंने तो निश्चय कर लिया कि अब पांडवों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपने प्राणों का त्याग अनशन व्रत के द्वारा कर दूंगा, अब मैं संसार में मुंह दिखाना एक लायक नहीं हूं, कम से कम पांडवों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं हूं, वे मेरा कितना उपकार करते हैं और मैं उनका अपकार पर अपकार किए जा रहा हूं, दुनिया मुझे क्या कहेगी, मेरे मुंह पर थूकेगी, क्या करूंगा? ऐसा भाव था। उसने कहा, नहीं, क्यों अनशन पर बैठे हो? वो नहीं माना, अनशन करने बैठ गया। जब वो दुर्योधन आंख बंद करके यूं बैठा तो उसको नींद की झपकी आई उसको नींद की झपकी आई और झपकी में स्वप्न आया। स्वप्न के अंदर देखता है राक्षस लोग आए और कहने लगे, अरे ओ दुर्योधन, तुम तो हमारे राक्षसों की तरफ से इस संसार में भेजे गए थे, संसार में राक्षस भाव को बढ़ाने के लिए भेजे गए थे, आज तुम ये पांडवों से न लड़ने की प्रतिज्ञा कर अनशन करके प्राण त्यागने की बात कैसे सोच रहे हो? तुमको तो पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। ऐसे उसको सपना आया। उसके बाद उसकी आंख खुली, आंख खुलने पर अपने स्वप्न की बात कह डाली। लोगों ने कहा, हाँ ये तो बात ठीक है, हम तो आपको पहले ही कह रहे थे। बैला फुसला कर फिर वैसा ही कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे नीच पाखंडी पापी दुर्योधन पर भी महाराज युधिष्ठिर के बर्ताव का कैसा असर पड़ा? पूछो दुर्योधन से कि कभी जीवन में तपस्या करने की, एकांत में बैठकर भजन करने की मन में आई? युधिष्ठिर के बर्ताव से ही आई। अच्छे व्यवहार का असर असुरों पर भी पड़ता है, इसलिए हमें सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यदि कहो कि कोई आदमी हम लोगों के साथ नीचता का व्यवहार करता है, उद्दंडता करता है, गालियां देता है, अनिष्ट करना चाहता है, हर प्रकार से अनिष्ट भी करता है, आखिर हम कब तक उसका ये खराब व्यवहार सहन करें और हम उसके साथ कब तक अच्छा और सद्व्यवहार करें? उसकी भी तो कोई सीमा होती होगी। इसमें आपको ऐसा, अब सेठ जी का उत्तर है, इसमें आपको ऐसा समझना चाहिए कि जो गालियां देता है, अनिष्ट करता है, वो दया का पात्र है, क्योंकि वह अज्ञानी है। यदि उसे ज्ञान होता तो वह ऐसा बर्ताव नहीं करता। आप लोगों को उस पर ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए बदला लेने की, वह दया का पात्र है, उस पर तो दया करो। आपका कोई लड़का पागल हो जाए और पागल होकर के लोगों को गालियां दे, किसी पर पत्थर फेंके, किसी का सिर फोड़ने दौड़े, किसी का अनिष्ट करने चला जाए, तो क्या आप उस लड़के का गला घोट दोगे, उसको मार दोगे? आपको दया ही तो करनी पड़ेगी। आप समझ लो ये पागल है। यदि कोई बीमार आदमी और सन्निपात में आ गया हो और अंड बंड बोलना चाहता हो, वैद्य को भी गाली निकालता हो, घर में आए हुए वैद्य को मारने दौड़ता हो, तो क्या वैद्य उसको जहर दे के मार देगा? वेद समझता है बेचारा ये प्रमादी, ये बेचारा परवश है, ये अज्ञानवश ऐसा करता है। इसलिए उस अज्ञान के अंदर किए हुए व्यवहार को वेद्य बुरा नहीं मानता है, ऐसे ही अज्ञान के वशीभूत हुए हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार को हमें देख करके उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यदि आप समझते हैं कि वह जो गाली देता है, मारने दौड़ता है, अन्याय करता है, तो तुम भी उससे प्रतिकार करते हो, तो तुम भी उसके बराबर के होगे। लोग तुमको वैसा समझते हैं क्या? लोग तुमको अच्छा समझते हैं। तुम अच्छे पुरुष हो तो तुमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तुमको तो उसके साथ साधुता का बर्ताव करना चाहिए। एक आदमी अगर नीच कार्य करता है तो हमें भी उसके समान नीच कार्य पर उतरना चाहिए? गलत बात है। एक आदमी हमको गालियां दे तो बदले में हम भी गालियां देंगे, तो उसमें हमारे में क्या अंतर हुआ? गालियां देने से जबान गंदी होगी, वह आदमी तो अपने अज्ञान से जबान गंदी कर रहा है और हम भी उससे बुरी शिक्षा ले रहे हैं और हम भी हमारी जबान को गंदा कर रहे हैं। जो आदमी समझदार होता है वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार नहीं करता। कोई बुरा व्यवहार करता है उसके साथ जो अच्छा व्यवहार करे वो श्रेष्ठ पुरुषों में माना जाता है। सबसे उत्तम पुरुष वही है जो अपने बुराई करने वालों के साथ भी अच्छा करे। मध्यम श्रेणी का पुरुष वह है जो अपने साथ बुराई करता है, वह बदले में उसके साथ बुराई न करे, न भलाई करता है न बुराई करता है, चुप रहता है, वो बीच का आदमी है। और कनिष्ठ पुरुष वो है कि जो अपने साथ भलाई करे उसके साथ भलाई करे, जो उसके साथ बुराई करे उसके साथ बुराई करे, ये तीन नंबर का आदमी है। इसलिए अपने को एक नंबर का आदमी बनना चाहिए। एक बात तो ये बात तो कुत्ते में भी देखी जाती है, एक कुत्ता दूसरे को भूंगता है और वो जमीन के ऊपर अपने खुरों को रगड़ रगड़ करके उसे लड़ने के लिए तैयार होता है, तो दूसरा भी वैसा ही तैयार होता है। ये तो कुत्तों में भी होता है, वो भूंगता है, वो भी भूंगता है, वो भी काटता है, वो भी काटता है, और कई कुत्ता वो भी उसको चाटता है तो वो भी उसको चाटता है। तो भला करने वाले के साथ भलाई और बुरा करने के साथ बुराई तो कुत्ते भी करते हैं। जो आदमी है वो भलाई के साथ भलाई करे और बुरे के साथ बुराई करे तो उसमें और कुत्ते में क्या अंतर हुआ? इसलिए वो शास्त्र क्या बोलता है, किस श्रेणी का आदमी है, उसे हम राक्षस कहें, पिशाच कहें कि तामसी कहें कि हमारे पास वचन नहीं है, किन वर्षों किन वचनों से उसको बताएं? वे तो महानीच है। उन सब बातों को समझकर हमको सबके साथ भलाई का बर्ताव करना चाहिए, और अपने साथ में कोई बुराई करे तो उसके साथ में भी अपनी भलाई छोड़नी नहीं चाहिए। अपना जो स्वभाव है उसमें कभी कमी नहीं आने देना चाहिए। एक महात्मा जी थे, बिच्छू काट गया, पानी में चला गया, महात्मा जी ने अरे भी बिच्छू मर जाएगा, तो महात्मा जी ने उसी हथेली से बिच्छू को वापस निकाला, डंक मार दिया, जहर चढ़ गया। पास में देखने वाले पुरुषों ने कहा कि हे महात्मा जी, आप इसको पानी के अंदर रहने दीजिए, जब आप निकालोगे तो डंक मारेगा, जब निकालो डंक मारेगा। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं महात्मा कहलाता हूँ, आप लोगों में अच्छा पुरुष कहलाता हूँ, मैं मेरा स्वभाव इसको देकर कैसे छोड़ दूँ। प्रहलाद का अनिष्ट करने के लिए उसके पिता तुल गए, जीवन भर अनिष्ट करते रहे, मारने का प्रयत्न किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, परंतु प्रहलाद जी के हृदय में कभी नहीं आया कि पिताजी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं तो मैं इसका बदला लूं, या उन्होंने कभी भगवान से भी ये प्रार्थना नहीं की, हे भगवान मेरे पिताजी के अत्याचारों से मुझे मुक्त कराओ, कभी नहीं कहा। गुरु पुत्र संडामर्क ने कृत्या को पैदा करके कहा कि तुम प्रहलाद को मारो, लेकिन जिसको भगवान चाहते हैं उसको कौन मार सकता है? वो कृत्या आई और प्रहलाद जी को मार नहीं सके, उल्टा वो गुरु पुत्रों को ही मारने के लिए दौड़ी। तो उनके मर जाने पर प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि महाराज, मेरे हृदय में यदि किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है तब तो मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाने चाहिए। तो गुरु पुत्र जीवित हो गए। आप विचार करो, ये कथाएं केवल कहने सुनने की नहीं होती है, ये अपने व्यवहार में लाने लायक होती है। प्रहलाद जी का व्यवहार कितना उच्च कोटि का। प्रहलाद जी से भगवान ने वरदान मांगने को कहा, लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं कुछ तो मैं दूंगा ही। तो कहा कि मैं तो कुछ नहीं चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि मेरे मन में कोई कामना ही न रहे, मांगने की इच्छा ही न रहे। भगवान ने कहा बेटा मैं तो इस बात से बड़ा खुश हो गया, लेकिन तू अब मेरे प्रसन्नता के लिए कुछ मांग, तू मांगेगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मेरी खुशी के लिए तू मांग। तो प्रहलाद जी क्या मांगते पता है? प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिताजी आपकी भक्ति में बाधा डालते रहे और आपकी भक्ति में जो बाधा डालता है उसकी दुर्गति होती है। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मेरे पिता का बड़ा भारी अपराध है, आप उनके अपराध को क्षमा कर दें और उनको सदगति प्रदान करें। भगवान ने बेटर कहा, बेटा जिससे तू पैदा हो गया, तेरे जैसा बेटा पैदा हो गया, उसकी सदगति में कोई संदेह है? तुम जब इतने यहाँ पैदा हो गए, जब तुम इनके यहाँ पैदा हो गए, तभी तेरे पैदा होते ही इसका कल्याण हो गया। तुम्हारे प्रभाव से इनका ही नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो ख्याल करना चाहिए प्रह्लाद जी का कैसा व्यवहार था। आखिर प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप का तो पिता पुत्र का पारिवारिक संबंध था। आप भी अपने परिवार में कोई कैसा भी व्यवहार करता हो, मन के प्रतिकूल करता हो, उसके प्रतिकूल व्यवहार को मत देखो और आप बड़े प्रेम से उनके साथ भलाई का और अपनी तरफ से जितना हो उनको खुश करने का, उनको सुख देने का प्रयास करना चाहिए। मेरी सब बातों का कहने का यही आशय है।